पृष्ठ संख्या 91, तृतीय सत्र, सगुण भक्ति काव्य, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई रसखान। पृष्ठ संख्या 92, सादा। पृष्ठ संख्या 93, भूमिका का, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि। पुराण प्रतिपादित भागवत धर्म के प्रचार प्रसार हेतु मध्ययुग में भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप जिस साहित्य का उदय हुआ उसे भक्ति काव्य कहा जाता है। अपनी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस युग के कवियों ने अपने उदार हृदय के भक्तिमय उद्गार लोक प्रचलित देशज भाषाओं में अत्यंत ही मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय जन भाषाओं में पहली बार साहित्य रचा गया और इन भाषाओं में बोली के दायरे से निकलकर भाषा के साहित्यिक पद गौरव को प्राप्त किया। आदिकाल अनेक विरोधों और व्याघातों का काल था। इस युग का साहित्य जिन परिस्थितियों का उपजात था उसकी चरम परिणति भक्ति काल में हुई। आदिकालीन कविता के धार्मिक पक्ष ने भक्ति काव्य को जन्म दिया तो उसका लौकिक पक्ष रीति काव्य के जन्म का कारण बना। अतः स्पष्ट रूप से मध्यकालीन कविता के समय को पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल ब्रैकेट में संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। मोटे तौर पर यह समय ईस्वी सन 1358 से लेकर 1900 ईस्वी तक फैला हुआ है। इस काल में कुछ ऐसे स्वनाम धन्य रचनाकार हुए जिन्होंने अपनी प्रतिभा से संपूर्ण भारतीय जनमानस की चेतना को अपनी कृतियों में साकार कर दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसे एक नई दुनिया कहा है। अपनी ऐसी ही अद्वितीय उपलब्धियों के कारण भक्तिकाल हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहलाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह काल तुगलक, लोदी और मुगलों के शासन का काल है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ और बाजार व्यवस्था से लेकर प्रजाहित में तमाम कार्य किए। उसके पश्चात 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। भक्तिकाल का समय मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी से शुरू होता है, जो इतिहास में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जाना जाता है। राजनीतिक दृष्टि से उसका दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद, राजधानी परिवर्तन उसकी दूरदर्शिता का परिचायक है, जहाँ से वह दक्षिण और उत्तर के राज्यों पर निर्विघ्न शासन कर सकता था। यह अलग बात है कि उसकी कोई भी योजना पृष्ठ संख्या 94 सफल नहीं हुई। उसे पुनः राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लानी पड़ी। इस वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1399 ईस्वी के प्रारंभ में हुए तैमूर के निर्मम आक्रमण से दिल्ली तहस नहस हो गई। उसके बर्बर कत्ले आम से दिल्ली की रूह सदियों तक कांपती रही। तुगलक वंश के बाद खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। अमीर बहलोल लोदी ने परिस्थिति का फायदा उठाकर 1451 ईस्वी में दिल्ली में लोदी वंश की आधारशिला रखी। इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1226 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। कालांतर में मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर ने अपने उदारवादी व्यक्तित्व के कारण हिंदू और मुसलमानों को परस्पर नज़दीक लाने का प्रयास किया। उसका शासनकाल सभी दृष्टियों से परिपूर्ण रहा। अकबर के पश्चात जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर औरंगजेब ने भी बहुत हद तक अकबर की ही नीतियों का अनुकरण किया, पर औरंगजेब में कट्टरतापन अधिक होने के बावजूद उसके शासनकाल में शनह शनह साहित्य, संगीत और कला का विकास होता रहा। भक्त कवि सांसारिक प्रलोभनों को मृगतृष्णा के समान समझते थे, इसीलिए सीकरी में अकबर के बुलाने पर कुंभन दास ने कहा था, संतन को कहाँ सी करी सो काम। व्यवस्था के प्रति आक्रोश कबीर और तुलसी की वाणियों में भी सहज ही व्यक्त हुआ है। सामाजिक दृष्टिकोण से मध्यकालीन समाज में जड़ता और अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों का बोलबाला था। मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद दोनों ही कौमों में भेद प्रकट करने के लिए मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। विजयनगर राजाओं के 15वीं शताब्दी के शिलालेखों में पहले पहल इस शब्द का प्रयोग मिलता है। मुसलमान अपने को शासक समझते थे, फलतः भेदभावपूर्ण वे यहाँ की जनता का अपमान करने लगे, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने लगे। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत के नियम अत्यंत कठोर थे। जातीय और धार्मिक संकुचन सर्वत्र व्याप्त था। कबीर की बाणियों तथा तुलसी की कवितावली के कलिकाल वर्णनों से उस समय की भुखमरी और बेगारी का पता चलता है। जाति धर्म के बंधनों तथा ऊंच नीच की आपसी खाई को पाटने के लिए ही कबीर जैसे संतों को आगे आना पड़ा। समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में अमीर राजे महाराजे, सामंत सुल्तान, सेठ साहूकार आते थे। दूसरा वर्ग किसान, मजदूर और श्रमिकों का था। तीसरा वर्ग अत्यंत ही गरीब और विपन्न लोगों का था, जिनके पास ना तो कोई पृष्ठ संख्या 95 नौकरी थी, ना ही खेती करने के लिए जमीन। कवितावली में वर्णित निम्न पंक्तियाँ तत्कालीन ऐसे ही समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। इसी प्रकार से आग बड़वाग्नि ते बड़ी है आग पेट की, तथा पेट ही के कारण बेचत बेटा बेट की आदि कवितावली की अन्य पंक्तियाँ उस समय के समाज की भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी और लाचारी का हृदय द्रावक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इससे सिद्ध होता है कि उच्च वर्ग अपने भोग विलास में मत्त था, जबकि शेष निरीह जनता शोषण और बेकारी में मर रही थी। तुलसी स्वयं इस दुख को भोग चुके थे। द्वारिन ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन। इसीलिए रामचरितमानस में उन्होंने राम राज्य जैसे आदर्श राज्य की कल्पना की। धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी मध्ययुग संक्रमण और अवरोधों से परिपूर्ण था। हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म को बड़ा सिद्ध करने में लगे हुए थे। हिंदू धर्म स्वयं ही शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों में बंट गया था। सनातन वैदिक धर्म प्रसिद्धों और नाथपंथी योगियों के रहस्य युक्त गूढ़ साधनाओं, अंधविश्वासों, धार्मिक क्रियाकलापों का प्रभाव था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों में सांप्रदायिक पाखंड की पूजा होती थी। पंडित और मौलवी धर्म की मनमानी व्याख्या करके आग में घी डालने का काम कर रहे थे। कबीर की बाणियों में इनके प्रति जो आक्रोश है वह इसी कारण है। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। ऐसे विद्रूप समाज में तुलसी, कबीर, नानक और अन्य संतों ने समरसता, भाईचारा और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। साहित्यिक दृष्टि से संस्कृत हिंदुओं की तो फारसी मुसलमानों की भाषा थी, और इनके बीच से धीरे धीरे हिंदी भी अपना मुकाम तय कर रही थी। सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से कला, संगीत, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला आदि के क्षेत्र में हिंदू मुसलमान एक दूसरे की कला की विशेषताओं से प्रभावित हुए। फलतः कला, स्थापत्य और संगीत की नई नई शैलियों का पल्लवन हुआ। ईरानी प्रभाव से गायन के क्षेत्र में ध्रुपद के मुकाबले ख्याल जैसी नई राग रागिनियों का प्रचलन हुआ। गजल गायकी और सूफियों की कव्वाली ने संगीत को एक नया रंग दिया। हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा आदि मध्यकालीन के संगीत विधा के ऐसे ही अद्वितीय रत्न थे। पृष्ठ संख्या 96। खा, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य। भक्ति आंदोलन 14वीं-15वीं शताब्दी का भक्ति का उमड़ता पारावार है, किंतु यह पारावार कब, कहाँ और कैसे अस्तित्व में आया, इस बात को लेकर विद्वानों में दो तरह का मतवाद प्रचलित है। एक, विदेशी धर्मों आक्रमणों का प्रभाव। दो, स्वदेशी चिंतन धारा का सहज विकास। डॉक्टर गियर्सन, विल्सन, बेबर, केनेडी, ताराचंद जहाँ इस पर ईसाइयत का प्रभाव ढूंढते हैं तथा कृष्ण की समता क्राइस्ट ईसा से कर ले जाते हैं, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी उत्पत्ति का कारण मुसलमानों के आक्रमण के साथ इस्लाम के आगमन को मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा कि बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसे मुसलमानों के आक्रमण से उपजी हताश हिंदू जाति की निराशा का परिणाम बताते हुए लिखा कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व व उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? और आगे द्रविड़ देश दक्षिण भारत की ओर संकेत करते हुए कहा कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी के इस मत में आंशिक सच्चाई अवश्य है, पर इससे पूरी तरह सहमत होना अत्यंत कठिन है। दूसरी चिंतन धारा के विद्वानों में डॉक्टर भंडारकर, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि विचारक आते हैं। द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के मत को एक भ्रांत धारणा मानते हुए भक्ति आंदोलन को भारतीय वैदिक चिंतन धारा का सहज और स्वाभाविक विकास बताया। उन्होंने लिखा कि यदि मुसलमानों के आक्रमण से भक्ति भावधारा को मरना ही था तो उसे पहले सिंध में, फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। और आगे लिखा कि यद्यपि कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, पृष्ठ संख्या 97 हूँ, पर जोर देकर यह कहना चाहूँगा कि यदि वह ना आया होता तो भी इस साहित्य ब्रैकेट में भक्ति साहित्य का 12 आना ठीक वैसा ही था जैसा आज है। सिर्फ 4 आना, जिसके अंतर्गत सूफी काव्य आता है, मुसलमानों के ना आने पर नहीं आता, लेकिन भक्त युग तब भी आता। द्विवेदी जी ने ग्रियर्सन जैसे ईसाइयत का प्रभाव ढूंढने वाले विद्वानों के वितर्क का खंडन करते हुए लिखा कि उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघखंड एकत्र हो रहे थे, वह अचानक बिजली की कौंध नहीं थी। और उन्होंने वेदोपनिषदों से लेकर आलवार और वैष्णव संतों का उदाहरण देते हुए उसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास बताया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे भारतीय नवजागरण का पहला सोपान बताया, जो सामंती चेतना के खिलाफ खड़ा हो गया था, जिसके मूल में समानता, समरसता, प्रेम और लोकवादी चेतना सार रूप में विद्यमान थी। कहना न होगा कि भक्ति आंदोलन का यह स्वदेशी मत ही उसकी सही व्याख्या करता है। दक्षिण भारत में आलवार और नायनार संतों को भक्ति आंदोलन के प्रभातकालीन सितारे कहा जाता है। आलवार वैष्णव तो नायनार शैव भक्त थे। आलवारों की संख्या 12 बताई जाती है, जिसमें अंडाल या गोदा नाम की एक महिला भक्तिन भी थी। नाथ मुनि ने इन संतों के भक्ति रस से पगे मधुर गीतों की रचनाओं का संकलन नालायिर दिव्य प्रबंधम में किया है, दक्षिण भारत में जिसे आज भी वेद तुल्य माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दक्षिण में भक्ति आंदोलन के जनक रामानुजाचार्य को इसी परंपरा का वाहक बताया है। उन्होंने लिखा कि सुदूर दक्षिण में आलवार भक्तों में भक्तिपूर्ण उपासना पद्धति वर्तमान थी। आलवार 12 बताए जाते हैं, जिनमें कम से कम 9 तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इनमें अंडाल नाम की एक महिला भी थी। इनमें से अनेक भक्त उन जातियों में उत्पन्न हुए थे जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था। इन्हीं लोगों की परंपरा में सुविख्यात वैष्णव आचार्य रामानुज का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं रामानुज की शिष्य परंपरा में रामानंद आते हैं, जिन्हें भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है। प्रचलित भी है कि भक्त द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है, जिनके वट व्यक्तित्व के नीचे सभी ऊंच नीच जातियों के संतों ने दीक्षा ली और भक्ति आंदोलन को भास्वित किया। इसमें कबीर, जुलाहा, रैदास, चमार, धन्ना, जाट, सेना, नाई, पीपा, राजपूत, भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद और श्री आनंद आदि विविध लोग, पृष्ठ संख्या 98, भिन्न भिन्न जातियों के इसमें सम्मिलित थे। रामानंद के प्रसिद्ध शिष्यों की संख्या 12 बताई जाती है, जिनमें कबीर और रैदास उच्च कोटि के भक्त और सुधारक थे। इनमें भी कबीर का व्यक्तित्व सबसे अखर था। इस भक्ति आंदोलन के प्रदेय पर टिप्पणी करते हुए गजानन माधव मुक्तिबोध ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि पहली बार साहित्य के इतिहास में शूद्रों ने अपने संत पैदा किए। इस भक्ति आंदोलन के द्वारा शाश्वत जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले जिस बेजोड़ क्लासिकल साहित्य का जन्म हुआ, वह अपने ढंग का निराला है, जिसे आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने एक नई दुनिया कहा है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि दक्षिण में भक्ति आंदोलन के जनक श्री रामानुजाचार्य थे। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंदाचार्य, रामानुज के गुरु का नाम यमुनाचार्य और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था, जो रामानुज की शिष्य परंपरा में आते थे। इन्हीं रामानंद द्वारा उत्तर भारत में आने के पश्चात यह भक्ति आंदोलन सर्वत्र फैल गया। उत्तर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भी इसे फैलने फूलने का पूरा मौका दिया। रामानुज ने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञान मार्ग के विरोध में भक्ति मार्ग को खड़ा किया था, क्योंकि ना तो सब ज्ञानी हो सकते हैं और ना ही सबकी मुक्ति। फलतः उन्होंने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। ठीक यही कार्य उत्तर भारत में रामानंद ने किया। यद्यपि कि यह आंदोलन भारतीय जनजीवन के लिए नया नहीं था, पर इस्लाम की उपस्थिति ने अचानक इसे वेगवान बना दिया और यह एक जन आंदोलन की तरह फैल गया, जिसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इससे हिंदू समाज में नई चेतना का आगाज हुआ। इस भक्ति आंदोलन की संक्षिप्त विशेषताएं इस प्रकार थीं। एक, भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर की एकता अर्थात एकेश्वरवाद पर बल दिया और भक्ति के माध्यम से उस तक पहुँचने का रास्ता बताया। दो, कर्मकांड, बाह्य आडंबर, यज्ञ, जप, तप, छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का खंडन किया। मनुष्य मनुष्य को बांटने वाले सभी प्रकार के मजहबों और पंथों का विरोध किया। तीन, चरित्र की शुचिता, आत्मा की पवित्रता, मन की निर्मलता और भक्ति भाव की निश्चलता पर बल दिया। हिंसा, घृणा, बैर को मनुष्य आचरण के प्रतिकूल मानते हुए भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। चार, गुरु के महत्व और उपदेश पर बल दिया। मोक्ष प्राप्ति हेतु संन्यास का खंडन करते हुए गृह में ही रहकर ईश्वरार्पण और उत्तम कर्म द्वारा भक्ति और प्रपत्ति को मोक्ष का कारण बताया। पृष्ठ संख्या 99। पांच, संतों ने पहली बार आम जन भाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। फलतः हिंदी में ब्रज, अवधी आदि क्षेत्रीय बोलियों तथा गुजराती, मराठी एवं बांग्ला आदि प्रांतीय बोलियों का विकास हुआ। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के अनेक सुपरिणाम निकलकर सामने आए। इससे कर्मकांड और पुरोहितवाद को गहरा आघात लगा। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हुआ। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के संपर्क में आए, जिससे वैमनस्य कम हुई। इसके धक्के से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों की दीवारें गिरने लगी। ऊंच नीच की खाई कम होने से निम्न वर्ग को भी ऊपर उठने का मौका मिला। स्त्री जाति की दशा में भी सुधार हुआ तथा जन सामान्य की भाषा में सृजन होने के कारण क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। इतिहासकार डॉक्टर केसी श्रीवास्तव का कथन है कि भक्ति आंदोलन ने देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में संगठित कर दिया। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के पतन के बाद भक्ति आंदोलन जैसा लोकप्रिय और लोकव्यापी आंदोलन दूसरा ना हुआ। इसी प्रकार डॉक्टर ताराचंद ने अकबर की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रभाव को रेखांकित करते हुए लिखा कि अकबर की दीन इलाही किसी निरंकुश शासक की सनक नहीं थी, अपितु वह उन अवश्यंभावी शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम थी जो भारतीय जनमानस में सागर की तरह उमड़ रही थी तथा जो कबीर और नानक जैसे संतों के विचारों में मुखरित हो रही थी। स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि उसने आम जनता से लेकर अकबर जैसे तत्कालीन शासकों के हृदयों को भी दूर तक प्रभावित किया तथा मजहब और पंथ के प्रति शासक के हृदय को भी और चौड़ा करने का काम किया। भक्ति आंदोलन के ईश्वर चिंतन में इसके निर्गुण सगुण दो रूप हुए। फलतः इस चिंतन एवं भक्ति भावधारा से जो साहित्य सृजित हुआ वह भक्ति काव्य कहलाया, जो इस प्रकार है। भक्ति काव्य दो भाग, एक निर्गुण धारा, दो सगुण धारा। निर्गुण धारा के दो भाग, ज्ञानाश्रयी संत काव्य कबीर, दो प्रेमाश्रयी प्रेम काव्य जायसी। सगुण धारा एक कृष्ण भक्ति कृष्ण काव्य सूर, दो राम भक्ति राम काव्य तुलसी। दार्शनिक विचार, उपासना पद्धति और भक्ति भावना को लेकर इन धाराओं का वर्गीकरण हुआ है। निर्गुण सत्ता के उपासकों ने अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि का खंडन किया और परमात्मा को ज्ञान तथा प्रेम के रास्ते साधना द्वारा आत्म पृष्ठ संख्या 100 साक्षात्कार का विषय बताया। इस पर अद्वैत तथा इस्लाम के एकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रभाव है। ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताने वालों में संत कवि थे, जिनमें कबीर दादू रैदास रज्जब आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसी प्रकार प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुँचने में सूफी कवि आस्थावान थे, जिनमें मुल्ला दाऊद जायसी कुतुबन मंझन उस्मान नूर मुहम्मद आदि का नाम आता है। सगुण सत्ता के उपासक अवतारवाद में विश्वास करते थे और मानते थे कि रूप रेख गुण जाति बिना निर्गुण को नहीं जाना जा सकता, अविगत की गति का पार नहीं पाया जा सकता। इनके अनुसार वह अवतार लेकर अपने भक्तों का उद्धार करता है। ज्ञान के स्थान पर इसमें भक्ति को ही मुक्ति का मूल साधन तथा ईश्वर तक पहुँचने का प्रमुख अवलंब माना गया। राम और कृष्ण के अवतार को लेकर दो तरह का साहित्य रचा गया। कृष्ण कवियों में अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय के कवि आते हैं। सुर का स्थान जिसमें सर्वोच्च है। इसके अलावा मीरा रसखान रहीम और नरोत्तम दास का नाम पंथ निरपेक्ष में सबसे ऊपर गिना जाता है। राम भक्त कवियों में भक्त शिरोमणि तथा कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त नाभादास ईश्वरदास केशवदास अग्रदास एवं प्राणचंद चौहान आदि का नाम प्रमुख रूप से आता है। गा सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कबीर ने कहा था, निर्गुण राम जपहु रे भाई अभिगति की गति लखी न जाई। सुर की गोपियों ने उद्धव से कहा, निर्गुण कौन देश को वासी और अविगत गति कछु कहत न आवय। तथा रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावय। इसलिए सब विधि अगम विचारहिं ताते सूर सगुण पद गावय। निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन कृष्ण काव्य में बड़े ही मनोयोग और तार्किक ढंग से किया गया है। स्वयं सूर का भ्रमर गीत एवं नंददास का भंवर गीत इसका उदाहरण है। तुलसी के यहाँ सगुण निर्गुण दोनों पर गंभीरता से विधिवत चिंतन किया गया है। इसीलिए दोनों उनमें कोई तात्विक भेद न मानकर बस नजरिए का फर्क माना गया है। इसीलिए उनके यहाँ दोनों का समन्वय है। वह स्पष्ट कहते हैं, फूले कमल सोह कर कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा और अगुनह सगुनह नहि कछु भेदा। तुलसी का व्यक्तित्व इसलिए बड़ा है कि वह अपने भीतर सब कुछ समेट लेता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने उन्हें लोक मंगल का कवि तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समन्वय का कवि कहा है। अवधारणा उपासना भक्ति स्वरूप मुक्ति रूप भाषा शिल्प आदि सभी दृष्टियों से सगुण भक्ति काव्य की संक्षिप्त विशेषताएं अग्रलिखित हैं। एक सगुण भक्त कवियों ने अवतारवाद की अवधारणा में आस्था रखते हुए निर्गुण का खंडन किया। उनके अनुसार कृपालु ईश्वर अवतार पृष्ठ संख्या 101 ग्रहण करता है तथा अपने भक्तों की करुण पुकार सुनता है। राम और कृष्ण के इन दो अवतारों को अवलंब बनाकर उनका चरित गान किया गया। दो सगुण भक्त कवियों ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। गुरु की सहायता के बिना जीव का अज्ञान दूर नहीं हो सकता। गुरु ही जीव को ईश्वर तक अपने ज्ञान लोक में पहुंचाता है, यद्यपि कि सगुण हो या निर्गुण। गुरु का महत्व सभी ने एक स्वर में स्वीकार किया है। 3 शास्त्र प्रतिपादित नौधा भक्ति को ही मुक्ति का परम मार्ग बताया गया। वैधि और रागानुगा भक्त रूपों के अंतर्गत श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन में से किसी एक के द्वारा भी जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण काव्य में प्रेम लक्षणा और पुष्टि भक्ति को भी इसका सहायक माना गया है। 4 भगवान की शक्ति शील और सौंदर्य विभूतियों के अंतर्गत उनके रूप लीला नाम और धाम का अनेकानेक रूप से गायन तथा चित्रण इन कवियों ने किया है। कृष्ण भक्तों में सौंदर्य चित्रण की प्रधानता है तो राम भक्तों में शक्ति शील सौंदर्य सभी का विलय है। 5 राम भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूपों का आश्रय लिया है जबकि कृष्ण कवियों ने मुक्तक को ही अपने हृदयोद्गार का माध्यम बनाया है। यह अलग बात है कि सुर सागर मुक्तक होते हुए भी प्रबंध काव्य जैसा है। 6 सगुणोपासना के कृष्ण भक्त कवियों ने जहाँ ब्रजभाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया वहीं तुलसी जैसे राम भक्तों ने अवधी और ब्रज दोनों को अपनी कविता में वाणी दी। घा सगुण भक्त कवि। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि राम और कृष्ण काव्य धारा के कवियों का काव्य सगुण काव्य कहलाता है जिसे राम काव्य और कृष्ण काव्य भी कहते हैं। राम काव्य के अंतर्गत जिन प्रमुख कवियों का नाम आता है उनमें भक्त प्रवर तुलसीदास भक्तमाल के रचनाकार नाभादास अग्रदास रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान हनुमान नाटक के कृतिकार हृदयराम आदि का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास को भी इसी परंपरा का वाहक माना जाता है। सभी राम काव्य धारा पृष्ठ संख्या 102 के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। संसार भर में राम काव्य की प्रतिष्ठा करने वालों में तो उनका नाम कनिष्ठिका धिष्ठति है। हिंदी में जिस प्रकार राम काव्य परंपरा के प्रारंभ का श्रेय रामानंद को जाता है उसी प्रकार कृष्ण काव्य परंपरा का प्रस्तोता आचार्य बल्लभ को माना जाता है। बल्लभ के पुत्र विट्ठलनाथ और उनके पुत्र गोकुलनाथ ने इसे सदियों तक सींचा। बल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के प्रयासों से अष्ट छाप की स्थापना हुई हिंदी में जिसे कृष्ण काव्य के लिए जाना जाता है। इसमें सर्वश्री सूरदास कृष्णदास परमानंददास कुंभनदास नंददास चतुर्भुजदास गोविंद स्वामी और छीत स्वामी का नाम आता है। मीरा रसखान और नरोत्तम दास का नाम कृष्ण काव्य के फुटकर या निरपेक्ष कवियों में गिना जाता है। मीराकृत पदावली रसखान कृत प्रेम वाटिका और नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित कृष्ण काव्य के माइलस्टोन है। सभी राम कवियों में जैसे तुलसी सर्वोपरि हैं वैसे ही सभी कृष्ण कवियों में सूरदास का स्थान है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि जब तक हिंदी भाषी लोग रहेंगे तुलसी और सूर का जोड़ा अमर रहेगा। अंग सगुण भक्ति काव्य की उपलब्धियां। शंकराचार्य के शुष्क निरस और एकाकी ज्ञान मार्ग के विरोध में रामानुजाचार्य ने भक्ति को केंद्र में रखकर जिस भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया उसकी व्याप्ति का प्रभाव आज तक बना हुआ है। इस आंदोलन ने जहाँ एक ओर समूची लोक चेतना को झकझोरा वहीं दूसरी ओर ऐसे उदात्त मूल्यों वाले साहित्य का सृजन किया जिसका प्रकाश आज भी मानवता का पथ प्रदर्शन कर रहा है। साहित्य जगत में इसने जिन कवि रत्नों को उत्पन्न किया उनकी दीप्ति की दमक आज भी पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। यह वह साहित्य है जिसमें मानवता और उदात्तता का मूल्य सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित है। यह वह सृजन है जिस पर हिंदी सदा गर्व कर सकती है। भक्त कवियों ने चिंता की जिस उदात्त भूमि पर रमते हुए अपने हृदय सागर का मंथन कर मनोरम भावनाओं का नवनीत प्रदान किया उसका महात्म्य अक्षुण्ण है। ब्रह्म के शक्तिशील और सौंदर्य विभूतियों का जैसा व्यापक सूक्ष्म और मनोरम वर्णन यहाँ मिलता है वह अन्यत्र विरल है। भक्ति को मुक्ति का प्रमुख आधार बताकर इन्होंने सभी के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनकी किशोर लीलाओं तक वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा मनोयोगपूर्ण भव्य चित्रण यहाँ मिलता है वह समूची हिंदी कविता में अद्वितीय है। आचार्य शुक्ल का यह कथन कि सूर वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट हैं उचित ही जान पड़ता है। पृष्ठ संख्या 103। सूर का भ्रमर गीत कृष्ण काव्य परंपरा का एक महान प्रस्थान बिंदु है, जिसका प्रसार उद्धव गोपी संवाद के रूप में आगे रीतिकाल के कवियों से चलकर भारतेंदु युग द्विवेदी युग तक फैला है। द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक इस परंपरा की अंतिम क्लासिकल कृति कही जा सकती है। भाषा और शिल्प के दृष्टिकोण से भी इन कवियों का प्रदेय कम नहीं है। ब्रजभाषा को साहित्यिक पद पर आसीन करने का श्रेय कृष्ण कवियों विशेषकर सूरदास को जाता है। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने ठीक ही कहा है कि जिस दिन वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की उसी दिन ब्रजभाषा के दिन लौटे। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान के लोक रंजक रूप का लीलामय आदर्श सामने रखकर अपने हृदय के नैवेद्य अर्पित किए। रहीम और रसखान जैसे संप्रदाय निरपेक्ष कवियों ने भी मजहब और पंथ से ऊपर उठकर कृष्ण की अनन्य प्रेमा भक्ति और नीति कविता में अपने हृदय को निमज्जित किया। राम काव्य धारा में तुलसी जैसे कवियों ने राम के लोक मंगलकारी मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का आदर्श समाज के सामने रखा तथा रामराज्य की कल्पना कर यह बताया कि राजा को कैसा होना चाहिए, अपनी प्रजा के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुलसी ने राम कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के उन उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा की जिसके लिए उसे संसार भर में जाना जाता है। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। राम कथा को भदेश भाषा में लिखकर उसे घर घर और गांव गांव तक पहुंचाकर तुलसी ने भक्ति की ऐसी धूम मचाई कि स्वयं कलिकाल घबरा उठा। उनके रामचरितमानस से ही गांव गांव और नगर नगर में रामलीलाओं का प्रचलन हुआ। जनता जिसे आज भी श्रद्धा के साथ देखती है। तुलसी ने लोक के सामने राम का आदर्श रखकर मनुष्य जीवन के सभी संघर्षों, सभी संबंधों और सभी सिद्धांतों की अर्थपूर्ण व्याख्या ही नहीं कि बल्कि राम के समान उसे जीवन में उतारने का भी संदेश दिया। वह राम जो बिना किसी अपराध के पिता की आज्ञा से वन चले जाते हैं और वह भरत जो बिना इच्छा और अधिकार के पाए हुए राज्य का परित्याग कर देते हैं, वह सीता जो पतिव्रत धर्म पालन हेतु वन का कष्ट सहती है और रावण द्वारा हरी जाने पर भी राम के चरणों में ही अनुरक्ति रखती है, ऐसे अगणित प्रसंग इस कथा में भरे पड़े हैं। तुलसी काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी समन्वय की भावना है जो उन्हें सच्चा लोक नायक बनाता है। भाषा शैली, काव्य रूप अथवा यों कहें कि लोक और शास्त्र में जो कुछ भी है वह सब रामचरितमानस में विद्यमान है। कुछ भी तुलसी की दृष्टि से ओझल नहीं हो सका। शायद इसीलिए उनके समकालीन भक्त कवि नाभादास ने उन्हें वाल्मीकि का अवतार कहा है। तुलसीदास पृष्ठ संख्या 104 काल दृष्टा थे। कवितावली में जिस कलिकाल का वर्णन उन्होंने किया है उसे कोई भी आज सत्य घटते देख सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राम और कृष्ण काव्य धारा के सगुण भक्त कवियों ने हिंदू जनमानस के समक्ष राम और कृष्ण का आदर्श सामने रखकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि परमार्थ का रास्ता लौकिक जीवन से ही होकर निकलता है। अतः जीवन के कर्म क्षेत्र में सब कुछ करते हुए भी लोभ मोह मान और माया से परे होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को भी महत्वहीन समझकर यदि निष्ठा निश्चलता और निष्प्रियता से लोक कल्याण के लिए परहित के लिए मनुष्य नैतिक हुआ आदर्शपूर्ण जीवन के पथ का अनुसरण करे तो उसे अलग से कहीं जंगल में जाने धुनी रमाने या भक्ति पूजा करने की जरूरत नहीं बल्कि उसका त्यागपूर्ण आचरण और सच्चा कर्म ही इस लोक से उसे मुक्ति प्रदान कर ईश्वरीय लोक का पथिक बना सकता है। सच्चे कर्म सच्ची भक्ति और सच्चे ज्ञान का ऐसा त्रिपुटीमय समरसतापूर्ण समन्वयात्मक संदेश हिंदी तो क्या दुनिया के अन्य किसी भी साहित्य में मिलना कठिन है। राकेश कुमार द्विवेदी।